हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री वृंदावन धाम की। तो आप सबका श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। श्री वृंदावन धाम भगवान का निवास स्थान है। दो प्रकार की पवित्र जगह होती है, एक को हम तीर्थ कहते हैं, तीर्थ स्थान, और एक होता है धाम। धाम भगवान का खुद का घर होता है, जहाँ पर भगवान मूल रूप से निवास करते हैं। और तीर्थ वो जगह है जहाँ पर भगवान धाम से निकलकर वहाँ जाकर लीला करते हैं। वो उनका परमानेंट स्थान नहीं है, लेकिन वो जाते हैं और लीला करके आ जाते हैं। जैसे अयोध्या प्रभु रामचंद्र का धाम है, और नासिक तीर्थ स्थान है, क्योंकि वो अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए और वहाँ लीला किया था, लेकिन वापस अयोध्या लौट के गए थे। हरे कृष्णा। हो सके तो मोबाइल्स आप साइलेंट पर रखिए। तो ये वृंदावन धाम जो है, ये भगवान का धाम है। जब भगवान को तपस्या करने का दिल होता है तो वो बद्रीनाथ जाते हैं, नर नारायण ऋषि का धारण करके, रूप धारण करके वहाँ तपस्या करते हैं। जब भगवान को भोजन का दिल होता है तो वो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी जाके 56 भोग का भोग लेते हैं। जब उनको विश्राम करने का मन बनता है तो वो रंगनाथ जाके साउथ इंडिया में सो जाते हैं। जब उनको राजनीति राजपाट चलाने का मन करता है तो वो द्वारका जाते हैं। लेकिन जब खेलने का दिल होता है तो कहाँ जाते हैं? श्री वृंदावन धाम में जाते हैं। और खेल में कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कोई अमीर आदमी का बच्चा भी खेलता है, और छोटे आदमी का बच्चा भी खेलता है, और गरीब का बच्चा भी खेलता है, सब खेलते हैं। सुंदर भी खेलता है और कुरूप भी खेलता है। बचपन में कोई भेदभाव नहीं होता। देखो आप कहीं भी जाएंगे ना, ट्रेन में जाएंगे तो बच्चे लोग तुरंत फ्रेंडशिप कर लेंगे। एडल्ट लोग को बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा बात करने के लिए, उनके ये सब मन के इनिबिशंस तोड़ के आगे जाने के लिए समय लगता है, लेकिन बचपन में कोई औरा नहीं होता है। वैसे भगवान जब वृंदावन में खेलते हैं तो अपना सारा पोजीशन सब कुछ छोड़ के वहाँ पर जाते हैं। भगवान वहाँ पर भगवान होना ये छोड़ के चल जाते हैं वहाँ पर। तो वृंदावन धाम की विशेषता क्या है? वृंदावन धाम में भगवान भगवान के रूप में जाते नहीं हैं। किसी का बालक, किसी का दोस्त, किसी का बॉयफ्रेंड, ऐसे ही सामान्य रूप में जाते हैं। यहाँ तक कि चप्पल भी नहीं पहनते, कोई ऐश्वर्य नहीं है, पूरी सादगी में जाते हैं। इसलिए वृंदावन धाम विशेष है। जो पूरे जगत का निर्माण करते हैं वो वृंदावन धाम में चोरी करके खाना खाते हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन में आते हैं। ब्रजवासियों का माखन चुराने के लिए वैकुंठ का अनंत ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं, ये उसकी विशेष बात है। तो उस वृंदावन धाम में हम आए हैं। तो वृंदावन धाम 84 कोस का है, अनंत कोटि, अनंत जो सीमा का धाम गोलोक है उसका 84 कोस हिस्सा पृथ्वी पर आता है। उसको भूमि पर आया हुआ वृंदावन यानी भौम वृंदावन कहते हैं। और वो यमुना और गोवर्धन के दो उसके अविभाज्य अंग हैं, इनसेपरेबल। वृंदावन धाम से गोवर्धन और यमुना अलग नहीं हो सकती है, और राधा रानी वहाँ पर आती नहीं है जहाँ पर गोवर्धन और यमुना नहीं रहती। तो ये जो 84 कोस का वृंदावन है, इसमें पूरे वृंदावन धाम में वृंदावन नाम का जो वन है वो 20 कोस का है। वैसे श्री वृंदावन धाम में प्रमुख 137 वन है, उसमें 108 वन भगवान को बहुत प्रिय है। उस 108 में भी 12 और ज़्यादा प्रिय हैं। और उन 12 में सबसे प्रिय है श्री वृंदावन। और श्री वृंदावन के अंदर क्या क्या आता है, आज का तारीख का जो वृंदावन है वो भी आता है, लेकिन यमुना, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और राधा रानी का ससुराल जावट, ये सब कुछ वृंदावन में आता है। तो अभी हम वृंदावन में बैठे हैं, लेकिन उसका एक अंदर का एक हिस्सा है, उसका नाम क्या है, बरसाना, वहां पर हम लोग बैठे। इस बरसाना की विशेषता क्या है कि पूरे विश्व के जितने देवता हैं, जितने ऋषिगण हैं, संत हैं, वो सब लोग भगवान के चरणों की रज धूल चाहते हैं और वो धूल लेने के लिए वृंदावन आते हैं। तो बाकी जगह धूल नहीं मिलती क्या? नहीं मिलती है, क्योंकि बाकी जगह भगवान चप्पल के बिना, जूता के बिना निकलते नहीं बाहर। द्वारका में तो सब जगह मखमल बना हुआ है, भगवान के लिए जमीन छोड़ते नहीं है, और अगर उनको कभी इच्छा हुई ना यहां से वहां जाना है, तुरंत रथ खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं रथ नहीं जाना है मुझे, तो बैलगाड़ी खड़ी हो जाती है। वो भी ना बोलेंगे तो पालकी आ जाती है, पालकी भी ना बोलेंगे पैदल ही चलना है, तो फिर सब जगह मखमल तो है ही, ऊपर से हीरे मोतियों से भरा हुआ चप्पल आ जाता है। तो भगवान के तलुओं का स्पर्श भूमि को होना नामुमकिन है बाकी सब जगह पर, लेकिन श्री वृंदावन धाम में बाय रूल वो जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पैर ही चलते हैं, वन माला पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों की धूल जो है ना वो केवल वृंदावन धाम में मिलती है। इसलिए सब लोग, सब धाम तीर्थ लोक छोड़कर वृंदावन में आते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जिसमें जिनके चरणों की धूल सब लोगों को प्राप्त करने की इच्छा है, वो किसी और के चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर आते हैं, और वो है राधा रानी। क्योंकि राधा रानी बरसाना में विहार करती है, ये राधा रानी का घर है, राधा रानी का निज धाम है, यहाँ पर उनके माता पिता रहते हैं, यहाँ पर उनका बड़ा भाई श्रीदामा रहता है, छोटी बहन अनंग मंजरी भी रहती है, और स्वयं राधा रानी भी यहाँ विराजती है और बरसाना में और पूरे ब्रज में वृंदावन धाम में विहार करती है। तो इनके चरणों की धूल लेने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं, कारण कि उनके ही चरणों से भक्ति का रस जो है, प्रेम का रस निर्माण होता है। इनके पैरों में पहने हुए पायल से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के द्वारा वेदों का निर्माण होता है, भक्ति और प्रेम रस का निर्माण यहाँ होता है, उसका विकास यहाँ से होता है, और यहीं से कृष्ण को वो रस प्राप्त होता है, और यहाँ से ही पूरे ब्रज में ये रस प्रसारित होता है। इसलिए जैसे कहते हैं ना, आपके घर में एक ड्राइंग रूम होता है, एक आंगन होता है, हो सकता है सबके घर में आंगन ना हो, लेकिन आंगन तो भी बहुत बड़ी लग्जरी होगी, लेकिन एक होता है ना, बाहर का दूध वाला आएगा तो बाहर से उसको विदा कर देते हैं, बेल बजाया, दूध लिया, आउट। फिर कोई दूसरा कोई होगा तो थोड़ा सा अंदर लेके ड्राइंग रूम में सोफा पे बैठ काम करके आउट। लेकिन कोई बहुत प्रेमी जन निकट के होंगे तो आपके बेडरूम में भी लेके जाएंगे, आपको डाइनिंग में लेके जाएंगे, बेडरूम में लेके जाएंगे, किचन में लेके जाएंगे, आपके प्राइवेट गैलरी में लेके जाएंगे। तो उसको कहते हैं अंतपुर, आपने सुना है अंतपुर का वर्ड, महाभारत रामायण सीरियल में आता है, अंत कक्ष, अंतपुर। तो वृंदावन धाम भगवान का अगर घर है तो ये अंतपुर है, इनर चेंबर, प्राइवेट चेंबर्स, यहाँ पर सब लोगों को एंट्री नहीं होती है। जो भगवान के गिने चुने भक्त हैं, जो भगवान को चाहते हैं, उतना प्रेम करते हैं, उनको यहाँ पर प्रवेश मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लीलाएं होती है कि जो आम वृंदावन में भी नहीं होती। यहाँ पर ऐसा प्रेम का प्रसंग होते हैं कि श्री वृंदावन धाम में भी वो नहीं हो सकता है, इतने उत्कट अंतरंग लीला यहाँ पर होती है। इसलिए भगवान ने और राजा रानी ने ऐसी व्यवस्था की है कि बरसाना में, नंदगांव में और जावट में कोई राक्षस को प्रवेश नहीं है। अगर आपने कृष्ण लीला को सुना होगा अच्छी तरह से, तो वृंदावन में कई वनों में राक्षस आए हैं, राधा कुंड पे आए हैं, मधुबन में आए हैं, वृंदावन में भी आए हैं, मथुरा में तो है ही राक्षसों का ही मंडली बैठी इधर, लेकिन बरसाना में, नंदगांव में कई राक्षस नहीं आए। इसका कारण भी यही है कि एकदम उत्कट अंतरंग लीला जब करना होता है ना, तो उसमें राक्षस वाक्षस की बाधा नहीं आ सकती, डिस्टर्बेंस है ना, वो भाव बदल जाता है पूरा। तो भोजन कर रहे हैं, राक्षस आया तो भोजन छोड़ के जाना पड़ेगा ना उसको मारने के लिए तो वो भी व्यवधान उन लीलाओं में नहीं हो सकता है। इसलिए बरसाना धाम में विशेष धाम है, अति अति उत्कट हृदयंगम हृदय हृदय के स्तर पर अति उत्कट लीलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। तो ये जो फोटो है ये बरसाना धाम का फोटो है, यहाँ पर इनका नाम लाडली जी है, हम लोग राधा रानी कहते हैं लेकिन उससे भी और प्यारा नाम लाडली जी है, उससे भी प्यारा नाम श्री जी है, वृषभानु नंदिनी है, कीर्ति कुमारी है, करुणामयी राधा रानी है, और भगवान को लाल कहते हैं, लाल जी या श्याम सुंदर जी कहते हैं, और बड़े भाई का नाम श्रीदामा है राधा रानी के। वो कृष्ण भगवान के सबसे उत्कट सबसे प्रियतम सखा हैं। और जो छोटी बहन है ना अनंग मंजरी, वो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं, तो पांचवा रस जो है माधुर्य लीला श्रृंगार रस, उसमें वो गोपी बन जाते हैं और राधा रानी की छोटी बहन बनकर राधा रानी की सेवा करते हैं घर में रहते हुए। ऐसा अनोखा भाव है यहाँ पर। तो आपका सबका स्वागत है। यहाँ पर राधा रानी रूठ भी जाती है और रूठ कर यहाँ पर एक और एक पर्वत है, यहाँ पर दिखाएंगे ना आप मान मंदिर, यहाँ पर चार शिखर है क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है पर्वत बनने के लिए। हम लोग तपस्या करते हैं तो क्या करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। हमारी हर एक जो तपस्या होती है सो कॉल्ड तथा कथित, उससे हम अपनी जगह से ऊपर उठना चाहते हैं ना, समथिंग हायर देन व्हाट वी हैव। लेकिन ब्रह्मा जी तो सबसे टॉप पोजीशन में हैं, सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव। वो तपस्या करते हैं क्यों, पत्थर बनने के लिए, ताकि भगवान और उनकी सखियां उन पर लीला करें। इसलिए ब्रह्माचल कहते हैं इस पर्वत को, जिसके चार शिखर हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के हमारे चार मुख हैं। एक है भानुगढ़ जहाँ पर हम बैठे हैं, इसमें भानु महल है, वृषभानु महाराज का महल है। राधा रानी के पिताजी का नाम वृषभानु है और माताजी का नाम कीर्तिदा है, कीर्तिदा देवी। तो जहाँ वृषभानु महाराज का महल है उसका नाम है भानुगढ़। फिर एक है दानगढ़ जहाँ पर भगवान दान मांगते हैं प्रेम का। उसके आगे विलासगढ़ जहाँ पर वो बहुत सारे सुंदर सुंदर विलास लीला करते हैं। और उसके आगे लास्ट में और अंतरंग वो है मानगढ़, जहाँ पर राधा रानी रूठ जाती है और रूठ कर बैठती है, इसलिए उसको मानगढ़ कहा गया है। मान दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रणय मान जो प्रेम के बीच में होता है, और एक होता है क्रोध मान जो हम लोग करते हैं ईर्ष्या के कारण या स्वार्थ के कारण हम क्रोध करते हैं। और राधा रानी का मान क्रोध से नहीं होता है, भगवान का प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसा ही अद्भुत धाम है, यहाँ पर आपको प्रवेश मिला है, आपका बड़ा भाग्य है। और राधा रानी से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में हमें भक्ति दे रही, क्योंकि जितनी भी भक्ति इस दुनिया में है, अणु मात्र है या पर्वत समान है, अनंत है, जितनी भी भक्ति जिसके अंदर है, संत के हृदय में अनंत होती है, हमारे हृदय में अणु मात्र होती है। वो जितनी भी भक्ति होती है, जो भी श्रद्धा भक्ति लगाव अट्रैक्शन होता है भगवान के लिए, वो सब राधा रानी से प्राप्त होता है। राधा रानी जो है ना उसका उगम स्थान है, स्रोत है, स्रोत। शी इज द ओरिजिन ऑफ भक्ति, गिवर ऑफ भक्ति, मदर ऑफ भक्ति। तो हम लोग यहाँ पर भक्ति की याचना करते हैं। और एक इसमें रहस्य की बात ऐसी है कि कृष्ण को सहजता से अट्रैक्ट करना मुश्किल है। आमतौर पर कृष्ण जो है ना वो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जो उनका अनन्य चिंतन करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। सहजता से 99.99 से भी प्राप्त नहीं होते हैं, उनको 100% पूरा एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहिए, तभी वो प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु हैं, भोली भाली है, करुणामयी है। वो जिसकी सिफारिश कृष्ण के लिए करते हैं उसको कृष्ण न चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते। तो ये और एक सीक्रेट है ना, जो किसी से बड़ा अधिकारी से काम करना है तो अगर उसके वाइफ का कांटेक्ट हो गया और वो पनीर मसाला देते देते बोलेंगे सुनी सुनिए जी ये भी एक काम करना है, वो तुरंत काम हो जाता है, बड़ा कोई फील्डिंग नहीं करना पड़ता उसके लिए। तो ये सीक्रेट है, ये धाम जो है ना वो भगवान के अटेंशन को पकड़ने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का, भगवान का हृदय आकर्षित करने के लिए हमारी ओर यहाँ एक ईजी सेंटर है, लोकल कॉल है यहाँ पर। यहाँ पर अपनी आप अर्जी रखेंगे, हृदय से पुकारेंगे राधा रानी बड़ी दयालु हैं, पहले तो आपको गोद में लेगी, वो अपने सखियों के द्वारा मैं शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, जो भी हमारी तैयारी है, लेकिन खुद के नेतृत्व में, खुद के देखरेख में करेगी, हमको तैयार करेगी और भगवान को प्रस्तुत करेगी। इसलिए हमेशा कैसे होता है, राधा रानी का हाथ ऐसे होता है, बहुत कम जगह पर ऐसे होता है, लेकिन ऐसे होता है। ऐसे क्या है, जो दिया गया है वो इनको अर्पण कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हम भी उस हाथ पर आ जाएं जिसमें वो हमें भी अर्पण करे भगवान के चरणों में। जय जय श्री राधे श्याम।